बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तरावी पर बात करेंगे और ये इस वजह से नहीं कि रमज़ान आ रहा है, बल्कि इस वजह से कि ये रमज़ान कोरोना लॉकडाउन में आ रहा है। तो मेरी दिलचस्पी इससे ये नहीं है कि मैं कोई फतवा दूँ या कोई मसले का हल पेश करूँ, बल्कि मेरी दिलचस्पी यह है कि हम इस साल कोरोना की वजह से एहतियात करते हुए उस तरीके की तरावी पढ़ सकते हैं जिस तरीके से नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। तो ये जुमला मैंने सिर्फ इसलिए ओपनिंग के लिए बोला है, लेकिन हकीकत यह है कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तरावी नहीं पढ़ी। इसलिए तरावी जिस तरह से आपने पढ़ी का मतलब यह है कि जो नमाज जिस तरीके से आपने पढ़ी उस तरीके से पढ़ने के लिए ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। तो मैं अपनी इस बात को समझाने के लिए कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तरावी नहीं पढ़ी, और अगर उन्होंने जो नमाज़ पढ़ी जिसको हम तरावी समझ के पढ़ रहे हैं, तो वो जिस तरह से पढ़ी, जिस वक्त में पढ़ी, मैं उसकी वजाहत करूँगा। और ये वजाहत मैं दो पहलुओं से करूँगा, एक कुरान मजीद के पहलू से और एक अहादीस मुबारक के पहलू से। तो आज की नशिस्त में हम कुरान मजीद के पहलू से बात करेंगे। पहली बात ये कि तरावी नाम की कोई नमाज़ ना कुरान मजीद में है और ना नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इस तरह का कोई नाम सुना गया। कुरान मजीद में इस नमाज के लिए दो तीन रेफरेंस में ये बात कही गई है। एक सूरह मुज़म्मल में ये बात कही गई है कि कुमुल लैला इल्ला कलीला, उससे फिर क्याम लैल का नाम बना इसका। सूरह बनी इसराइल में फतह जद बही नाफिला तल्लक, इसमें फिर आपके लिए जो फतहज्जद का लफ्ज़ है इससे फिर तहज्जुद का नाम इसके लिए मशहूर हुआ। और तीसरा लफ्ज़ जो इसके लिए बोला गया वो सलातिक है, तो नमाज तहज्जुद उसी से निकला हुआ है कि ये एक नमाज है। और सूरह मुज़म्मल में नाशियत अल्लैल के अल्फाज भी आते हैं जिसका मतलब है सोकर उठना, तो रात को। तो इस पहलू से ये दो तो नाम नहीं बने, लेकिन तरावी की बजाय इसके जो दो नाम कुरान में मौजूद हैं वो तहज्जुद है और क्यामुल लैल है। तो क्यामुल लैल भी मशहूर हुआ, तहज्जुद भी मशहूर हुआ, लेकिन हमने जो क्यामुल लैल को जो शक्ल दी हज़रत उमर के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके लिए हमने तरावी का लफ्ज़ बहुत बाद में बोला है। शुरू में तरावी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। तो पहले हम कुरान मजीद से आज बात करते हैं कि कुरान मजीद में ये इबादत क्या थी। कुरान मजीद ने यह कहा है सूरह मुज़म्मल में नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप रात को उठकर इबादत करेंगे। अब रात का मतलब क्या है? रात तो मगरिब से शुरू हो जाती है और फजर तक रहती है, तो ये नमाज का रात के लिए उठने से मुराद क्या है? इसको सूरह बनी इसराइल से यह लफ्ज़ वाज़े होता है, और ख़ुद कुमुल लैल और नाशियत अल्लैल के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में, इनसे ये बात वाज़े होती है कि ये दरअसल रात के उस पहर उठना है जिस पहर में सोकर नींद कुछ लेकर फिर उठा जाए, बेदार होकर नमाज पढ़ी जाए। तो जाहिर है कि ये इशा के बाद नहीं है। अब मैं कुछ वजाहत करता हूँ। पहला लफ्ज़ है कुमुल लैल, रात को उठें। कुम के अंदर ये मफहूम शामिल होता है, अगर रात या नींद का लफ्ज़ इसके करीना में मौजूद हो कि भाई सोकर उठेंगे, यानी आदमी सोएगा और फिर उठेगा। इसी तरह नाशियत अल्लैल का मतलब यही होता है कि रात को जागना, यानी सोए हुए से बेदार होकर इबादत के लिए खड़े होना, तो ये नाशियत अल्लैल है। तो इससे भी ये बात वाजे हो रही है कि इसमें सोना और सोकर उठना पेश नज़र है। इसी तरह तहज्जुद का लफ्ज़ जो है फतहज्जुद भी, उसमें जो मफहूम होता है वो दो होते हैं। एक ये कि रात भर जागते रहना, इसमें सोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लफ्ज़ जागने का जो है उसका कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि अगर वो इशा तक जागता रहा हो तो कहे मैं रात जागता रहा, नहीं, ये नहीं कह सकते। तो रात जागने के लिए अगले पहरों में जाना पड़ता है। तो इससे भी ये बात वाजे हो रही है कि फतहज्जुद बही के अल्फाज बोलकर ये बताया जा रहा है कि उन पहरों में नमाज पढ़नी है जिन पहरों में रात के जिन औकात में सोया नहीं जाता, उसमें अगर कोई आदमी सोया जाता है, अगर उन औकात में जिसमें सोया जाता है उसमें अगर कोई आदमी जाग रहा हो तो उसको कहते हैं ये रात भर जागता रहा है। तो फतहज्जुद तहज्जुद के अंदर दूसरा मफहूम भी शामिल है जो नाशियत अल्लैल में है कि सोकर उठना। तो ये तीनों अल्फाज कुमुल लैल, नाशियत अल्लैल और फतहज्जुद भी, ये तीनों मकामात ये बताते हैं कि तहज्जुद का टाइम दरअसल रात के उन पहरों में है, उन औकात में है जिसमें हम कह सकें कि रात जागना मुराद है, जिसमें हम कह सकें कि नाशियतल लैल यानी सोकर उठे हैं। तो ये तीन मकामात ये बताते हैं कि ये नमाज इशा के फौरन बाद पढ़ने की नहीं थी। अब ये जब इसका वक्त मुतय्यन हो गया कुरान मजीद से कि ये दरअसल सोकर उठकर और काफ़ी देर बाद, जिसको हम शाम के अव्वल अव्वल जो टाइम है उसमें ये मुराद नहीं है बल्कि ये बाद के टाइम में मुराद है। तो अब ये जो नाशत अल्लैल और तहज्जुद का लफ्ज़ और कुमुल लैल के जो अल्फाज हैं ये बता रहे हैं कि ये अभी भी अरब जब क्यामुल लैल बोलते हैं तो वो तहज्जुद ही का टाइम लेते हैं, लेकिन चूंकि तरावी हमने अलग नमाज बना दी जो नबी सल्लम के ज़माने में नहीं थी, इस वजह से फिर हमने वो दूसरा तसव्वुर इसके साथ जोड़ दिया। अगली बात जो समझने की है वो ये कि जब ये हुक्म दिया गया है तो आपको ये फरमाया गया है कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला निस्बहु अविन कुस मिनहु कलीला औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इस हुक्म में रकातें पेश नज़र नहीं हैं बल्कि आधी रात उससे कम या उससे ज़्यादा जागना कुरान के साथ मकसूद है। यानी इसमें यह नहीं कहा गया कि आप 2000 रकातें पढ़ें या 11 पढ़ें या 20 पढ़ें या 23 पढ़ें, यह नहीं कहा गया, बल्कि यह कहा गया कि आपने कुरान के साथ जागना है। ठीक है, तो कुरान के साथ नमाज पढ़नी यानी कुरान पढ़ने की लंबाई के साथ लंबे अरसे के लिए कुरान पढ़ना मतलूब है। तो इसलिए ये अल्फाज इख्तियार किए गए। उर्दू मुहावरे में हम कह सकते हैं कमोबेश आधी रात, तो कमोबेश आधी रात कुरान पढ़ते हुए नमाज पढ़नी है। वरतिल कुरान तरतीला, इसमें यानी जो असल मकसूद है वो ये कि कुरान मजीद समझ समझ कर गौर करके पढ़ा जाएगा और ये टाइम लंबा होगा, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे ज़्यादा, यानी कमोबेश आधी रात। तो कमोबेश आधी रात का वक्त इसमें मांगा गया था, ना कि रकातें। हो सकता है कि एक ही रकत में आप खड़े रहें तो मंशा पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें रकातें पेश नज़र नहीं हैं। और ये जब बात वाजे हो गई तो यानी दो बातें हमने अभी तक समझी हैं, एक ये कि कुरान ये चाहता है कि ये रात के पिछले पहर में पढ़ी जाए, सोकर उठकर पढ़ी जाए, और दूसरा कुरान ये चाह रहा है कि इसमें कुरान ठहर ठहर कर समझ कर गौर करके लंबे टाइम के लिए पढ़ा जाए। और ये भी बात वाजे है कि ये हर रोज़ की नमाज है, ये रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, यानी 12 महीने हर रात को अल्लाह ताला के रसूल के लिए। अब अगला मसला ये है कि इसमें जब नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ है और पढ़ने के लिए जो तरीका बताया गया वो भी समझ लेना चाहिए। ख़ुद इस अकेले आदमी जब नमाज पढ़ रहा होता है और रतिल कुरान तरतीला जब हो रहा होता है तो आदमी की आवाज़ धीमी हो जाती है। जब वो गौर करते हुए पढ़ रहा होता है तो वो उस तरह से बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ता जिस तरह से हमारे कारी दूसरों को कुरान सुनाने के लिए पढ़ते हैं, तो उस तरह से नहीं होता, बल्कि आदमी की आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो जाती है। चुनाचे यही वजह है कि सूरह बनी इसराइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया है कि वला तजहर बिसलातिक, अपनी नमाज को जाहरी नमाज ना बना लो, वला तुखाफित बिहा, ना इसको सिर्री नमाज बना लो कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, वब्तगी बैना जाली का सबीला, बल्कि दरमियानी सा रास्ता इख्तियार करो। यानी ना ये दिल में पढ़ने की नमाज है, ना ये बहुत ऊंची जैसे हम मगरब और इशा और फजर पढ़ते हैं, बल्कि ये धीमे लहजे में पढ़ने की नमाज है। तो रतिल कुरान तरतीला और धीमा लहजा ये दोनों एक साथ होते हैं, यानी जब गौर करके समझते हुए आदमी पढ़ रहा होता है, दूसरे के सुनाना पेश नज़र नहीं होता कि मुक्तदी शामिल हों, तो उस वक्त जो आवाज़ रखी जाएगी वो ये रखी जाएगी। ये सूरह बनी इसराइल की 110 नंबर आयत है जिसमें ये बताया गया है। तो रतिल कुरान तरतीला और वब्तगी बैना ज़ालिका का सबीला, ये दोनों कुरान पे गौर व खौज के लिहाज से मुकर्रर किए हैं। तो इसका तरीका ये है कि तरावी की तरह ये ऊंचा नहीं सुनाया जाता जिस तरह हम तरावी पढ़ते हैं, बल्कि ये धीमी आवाज़ में अपने आप को सुनाने के लिए गौर व खौज के लिए पढ़ा जाएगा। अब ये जब हमें तीन बातें वाजे हो गई, वक्त इसका क्या है, सोकर उठकर पढ़ी जाएगी, असल मुतालबा ये है यानी रात को नींद तोड़कर उठा जाएगा, और फिर ये कि ये ठहर ठहर कर रतिल कुरान तरतीला और बतगी बैन अजाली का सबीला ठहर ठहर कर गौर करते हुए पढ़ा जाएगा और पढ़ते हुए आवाज़ धीमी रखी जाएगी। दूसरे नमाजियों को सुनाना पेश नज़र नहीं है जो पीछे इक्तदा में खड़े होते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी बताए गए। वो फ़ायदे ये बताए गए हैं कि ये दिल जमी का बायस है। दिल जमी का मतलब ये होता है कि आपको फ़िक्र कम लाहक है, दिल मजबूत है, जो बात आप लेकर खड़े हैं मैदान में, दावत के मैदान में, तबलीग के मैदान में, उस पर आपको पूरा इत्मीनान है, पूरे दिल का सुकून है उसके ऊपर, दिल का पूरा इत्मीनान है, कोई उसमें यानी शक शुबा रैब गुमान इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल क्लैरिटी होती है, 100% बात वाजे होती है। और दूसरा फ़ायदा ये बताया गया कि अकवा मुकीला के बात करते हुए जब आदमी इस तरह से कुरान से मुस्तहज़र रहेगा, हर रोज़ उसमें से गुजरेगा, तो उसकी बात बहुत दो टोक वाजे सीधी नपी तुली और रैब से और कजी से पाक हो जाएगी। तो ये इस नमाज के फायदे बताए गए हैं। इस क्योंकि इसमें रत्तिल कुराना तरतीला है, गौर खौस के लिए है, कुरान में उतरने के लिए है, कुरान में डूब जाने के लिए है। तो ये नमाज इस तरह से इसका, और इसमें एक और पहलू भी इस नमाज का बताया गया है कि वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कि खुदा की तरफ रुजू करने का, खुदा से जुड़ जाने का, खुदा की गोया समझ लीजिए कि उसके उसके गोद में, उसके कंबल में छुप जाने का नाम है, ये वतबत्तल इलैहि तब्तीला। इस नमाज का तीसरा बड़ा फायदा ये है। पहला ये कि ये जुबान में कुव्वत बयान पैदा करती है, रसूख पैदा करती है। दूसरा ये कि दिल का इत्मीनान और अपनी बात पर दिल जमी पैदा होती है। और तीसरा ये कि ये दुनिया से कट कर खुदा से जुड़ जाने का, वतबत्तल इलैहि तब्दीला का मफहूम पैदा। इसमें इसमें समराइज का ये है कि आदमी खुदा के साथ करीब हो जाता है। तो ये तहज्जुद का ये तीन बड़े फायदे थे, और साथ ये कि ये अल्लाह की इबादत है, शुक्रगुजारी है। अब ये जो हमारे सामने कुरान से जो बातें हमें मालूम हुई, इसका वक्त मालूम हो गया, इसका पढ़ना कैसे है, पढ़नी कैसे है नमाज, इसमें कुरान मजीद का कितना अमल दखल है, तो और ऊंची आवाज़ रखनी है कि गौर खौज वाली आवाज़ रखनी है, ये सारा इसमें वाज हो गया। अगली बात जो इस सूरह मुजम्मल से और सूरह बनी इसराइल से वाज हो रही है वो ये कि ये नमाज असल में नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ की गई थी, उम्मतियों के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी, आप अकेले इसके मुकल्लफ़ थे। ये या अय्युहल मुजम्मल से भी बात वाजे है कि मुजम्मल दुनिया में और कोई नहीं है जिसको ये मुजम्मल कहा गया। तो या अय्युहल मुजम्मल कुमुल लैल, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ए मुजम्मल आप उठिए रात को, ठीक है। तो इससे ये बात वाजे हो रही है, उस वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया गया है, उम्मत का जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उम्मत इसमें पहले पहल शामिल नहीं थी। यहां से पता चलता है कुमुल लैल से और या अय्युहल मुजम्मल से। फिर सूरह बनी इसराइल से पता चलता है कि सूरह बनी इसराइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि बला तजहर बे सलातिक का, जो अभी हमने बात की, तो बला तजहर बे सलातिक में सलातिक का लफ्ज़ बोला गया, यह आपकी नमाज है। और फिर जहां हुक्म दिया गया तहज्जुद तहज्जुद के लफ्ज़ के साथ, वहां भी जो अल्फाज इख्तियार किए हैं कुरान मजीद ने वो यह है कि वमिन अल्लैली फतहज्जद बही नाफिलतन लक, ये आपके लिए इजाफी नमाज है, आपके लिए इजाफी नमाज है। नाफिला जो नफल हम पढ़ते हैं उसी से निकला हुआ लफ्ज़ है, तो ये आपके लिए अलग से एक इजाफी नमाज है। लक का लफ्ज़ वाहिद का बोल करके आप एक शख्स के लिए ये नमाज अलग से इजाफी है, ये बता रहा है कि इस नमाज के मुकल्लफ अव्वल अव्वल सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जब नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया, तो सहाबा इसमें अपनी मर्ज़ी से शामिल हुए। वो कैसे हुआ? लगता ये है, यानी ये फितरी सी बात है कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुरान को लेकर उतरे और अपने जो सहाबा थे उनमें जब कुरान ने नेक लोगों की ये बात बताई कि नेक लोग जो हैं वो कलीलम मा यहजऊन, कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, के वो रात को थोड़ी देर के लिए सोते हैं, और ये फरमाया कि वबिल असहारिहुम यस्तगफिरून, वो रातों को सहरी के वक्त उठकर तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं। तो जब ये बात कही गई तो उस वक्त सहाबा के दिल पर इसने असर किया, तो वो भी उठकर रातों को सहरी के वक्त इस्तगफार करने के लिए, इबादत करने के लिए उठते रहे होंगे। और ये फितरी सी बात है कि कुछ सहाबा के घरों में इतनी जगह नहीं होगी, या घरों में बाकी बच्चे सोए हुए हैं तो उनको बेदार करने के बजाय वो मस्जिद में आ जाते होंगे। तो उन्हीं दिनों में नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मस्जिद में एक बोरी बोरिया लटका कर हुजरा सा बना लिया था, जैसे हम इतकाफ़ के दिनों में बना लेते हैं, अपने खैमे से और टेंट से बना लेते हैं, उसमें हम इतकाफ़ करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हुजरे मुबारक के साथ ही मस्जिद के अंदर ये बना लिया और उसमें आप तहज्जुद पढ़ने लग गए। जब आप तहज्जुद पढ़ने लग गए तो सहाबा ने आपकी आवाज़ में शामिल होने के लिए इकट्ठे होने लग गए। तो यूं सहाबा जो अपने मकसद से वबिल सहारे हम यस्तगफिरून की मंजिल पाने के लिए आए हुए थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में शामिल होने लगे। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आ रही हो और वो नमाज़ पढ़ रहे हों और आप उसमें शरीक ना हों तो मस्जिद में भी मौजूद हों, तो ये ज़ाहिर है कि बड़ी महरूमी की बात होती। तो इसलिए सहाबा ने अपनी अपनी नमाज़ें छोड़ दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने लग गए। ये लगता है कि काफ़ी लंबा अरसा चलता रहा, क्योंकि कुरान का व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीना माअक के जो अल्फाज हैं वो बता रहे हैं कि साथी लंबे अरसे के लिए आपके साथ रहे। बहरहाल अब जब ये सहाबा शामिल हो गए तो सहाबा के शामिल होने को कुरान मजीद ने कबूल किया है, अल्लाह ताला ने इसको पसंद किया। लेकिन पसंद करते ही फिर कुछ नरमी कर दी गई इसमें, क्योंकि मुतालबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था और उनको उनसे जिस शान का मुतालबा था सहाबा वो पूरा नहीं कर सकते थे। चुनाचे जब सूरह मुजम्मल की आखिरी आयत देखिए तो उसमें आगाज़ यहीं से होता है कि तेरा रब ये जानता है कि आप दो तिहाई रात, आधी रात और एक तिहाई रात खड़े रहते हैं। अल्लाह का मुतालबा क्या था? कमोबेश आधी रात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो तिहाई रात भी खड़े रहते थे, यानी मुतालबे से कहीं ज़्यादा। और फिर फरमाया कि वताइफ़तु मिनल्लज़ीना माअक, और अल्लाह ताला ये भी जानता है कि तुम्हारे साथ एक ग्रुप भी मोमिनों का खड़ा हो रहा है। तो आगे वजह बताई कि अल्लाह ताला तो अपना जो अंदाजे कायनात के सुबह शाम के रखता है, लेकिन वो जानता है कि तुम इसको पूरा नहीं कर सकोगे। जो रसूल से मुतालबा किया गया था कि दो तिहाई रात हो रही है, आधी रात हो रही है, एक तिहाई रात हो रही है, सहाबा ये पूरा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए फरमाया फताबा अलैकुम, तो मैं तुम्हें नरमी कर रहा हूँ, तो अब जो भी तुम्हें मैसर हो वो पढ़ लिया करो। तो पहली बात, पहली दफ़ा ये नरमी की गई सहाबा के शामिल होने की वजह से कि अब सारे सहाबा इस मयार पर पूरे नहीं उतर सकेंगे कि वो इतना लंबा टाइम गुजारें जितना नबी अकरम तहज्जुद में गुजारते हैं। तो इसलिए नरमी कर दी गई, और नरमी ये की गई कि जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ लिया करो, क्योंकि नबी सल्लम भी शामिल हैं, सहाबा भी शामिल हैं, तो नरमी दोनों के लिए हुई है। अब जब ये कहा गया कि भाई जितना मैंने मुतालबा किया था उतना तुम पूरा नहीं कर सकोगे, तो वाजे हुआ कि वो जो आधी रात का मुतालबा था वो नरमी पर कर दिया गया है और अपनी अपनी सहूलत पर कर दिया गया है। फ़करा उमा तयसरा मिनल कुरान, के जितना जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ लिया करो। तो गोया मुराद क्या हुई कि अब कोई आदमी आधे घंटे के लिए उठ सकता है तो आधे घंटे पढ़ ले, 15 मिनट के लिए पढ़ सकता है तो 15 मिनट के लिए पढ़ ले, आधी रात जाग सकता है तो आधी रात जाग ले। ये मुतालबा जो पहला मुतालबा था कि कुमल लैला इल्ला कलीला निसफ हुआ बिन कुछ मिन कलीला, उसमें नरमी कर दी गई। दूसरी बात जो इसमें फरमाई गई है वो ये है कि मर्द बीमारी, सफ़र, तजारत और जिहाद, ये तीनों चीज़ें भी इसमें नरमी का बायस है। तो अब जितना कुछ मुयस्सर हो पढ़ लिया करो। तो सफ़र और इस तरह की चीज़ों में मुतय्यन करना कि भी मैं इस वक्त उठ जाया करूँगा, ये कर लिया करूँगा, तो इसमें भी नरमी की गई। ये नरमी गालिबन टाइम की नरमी है कि जब भी मुयस्सर आ जाए उस वक्त आप पढ़ सकते हैं ये नमाज़। तो इशा के बाद यानी रात होनी चाहिए, रात के किसी पहलू, किसी पहर भी, किसी मौके पर भी ये पढ़ी जा सकती है। अगर एक आदमी मुसाफिर है, वो तजारत के लिए निकलना चाह रहा है, तो मसलन रात को 12 बजे उसने पड़ाव किया है, तो पढ़ के सो जाए तो ये भी ठीक है। इशा के बाद पढ़ सकता है तो पढ़ ले कि पता नहीं रास्ते में अब रात को सफ़र करना है, गर्मी के दिन है, सुबह सफ़र नहीं हो सकता, तो रात को सफ़र करना है, तो रात को सफ़र करने के लिए वो ज़ाहिर है कि उस तरह की तहज्जुद नहीं पढ़ सकता जिस तरह के घर में रहते हुए। तो इन सारी चीज़ों को सामने, इसी तरह जिहाद है, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए गालिबन नरमी कर दी गई। ये नरमी वक्त की तरफ जहन को ले जाती है कि जब भी मौका मिले रात के किसी भी पहर में ये पढ़ी जा सकती है। तो अब ये जो नरमी कर दी गई, एक नरमी कर दी गई कि वो टाइम सुकेड़ने की इजाज़त हो गई, अब आधी रात कमोबेश आधी रात मुराद नहीं है, और दूसरा ये कि किसी भी लम्हे ताजर आदमी, मुसाफिर आदमी और बीमार आदमी, जिस लम्हे उसको करार मिल जाए इसके नमाज पढ़ने का, वो पढ़ सकता है। इसी से गालिबन बाद में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी सहाबी ने पूछा तो आपने इशा के बाद भी इजाज़त दी है, क्योंकि इसमें नरमी कर दी गई दोनों पहलुओं से। वक्त का मुतालबा कम कर दिया गया, हमारी मर्जी पर छोड़ दिया गया, और वक्त का मुतालबा भी कम कर दिया गया जो नाशियातुल्लैल में और तहज्जुद बही में था, उसको कम करके उसको इशा के बाद भी करने की इजाज़त दे दी गई। तो गोया जो हमारे इस वक्त मौजूदा तरावी है उसमें दो बातें कुरान से माखूज हैं। एक ये कि हम रकातों की बजाय घंटे के लिए तरावी पढ़ लेते हैं, ठीक है, आधी रात की बजाय, और दूसरा ये कि हम टाइम हमने इशा के बाद कर लिया, तो ये इस रुख्सत के अंदर ये इजाज़त शामिल है। तो जो लोग तरावी को बिदत कहते हैं उनकी बात इस इन दो पहलुओं से दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये पहलू कि रमज़ान के साथ उसको ख़ास कर दिया गया है, ये कुछ मख्दूश बात है, इसको ऐसा नहीं रहना चाहिए था। तो अब ये कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहज्जुद और सहाबा का शमूलियत, उम्मत की शमूलियत, उम्मत के लिए तहज्जुद की जो अब शक्ल है वो ये है कि आप हमें जब मैसर हो, जितना मैसर हो, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उसको पढ़ना, पढ़ सकता हो तो पढ़ना चाहिए। है ये रात ही की नमाज, इशा के बाद से लेकर फजर तक के दरमियान आप, यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले हम इसको पढ़ सकते हैं, और इसकी लंबाई भी रुख्सत कर दी गई और इसके टाइमिंग में भी रुख्सत कर दी गई। अब ये नाशियातल्लैल नहीं रही, यानी सोने से पहले भी पढ़ी जा सकती है। तो अब ये जो कुरान मजीद से जितनी बातें मालूम हो रही थी वो मैंने आपके सामने रख दी, दोहरा देता हूँ। ये असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ हुई थी, बाद में सहाबा इसमें शामिल हो गए। ये नाशियातल्लैल थी, यानी सोकर उठकर पढ़नी थी, जैसा कि हम देखेंगे कि अहादीस से भी ऐसा ही मालूम होता है, और इसमें सहाबा शामिल नहीं थे, सहाबा बाद में खुद शामिल हुए। उनकी वजह से दो नरमियाँ की गई, एक नरमी ये की गई कि वक्त जितना चाहे, आधी रात का मुतालबा नरम कर दिया गया और अब जितनी देर के लिए भी कोई पढ़ सकता हो पढ़ ले, और दूसरा जो है वो सफ़र की वजह से, मर्ज़ की वजह से ये रियायत कर दी गई कि जिस वक्त भी मैसर हो उस वक्त जितना कुरान मैसर हो उतना पढ़ लिया जाए। तो ये दो नरमियाँ कर दी गई, इसकी वजह से आज हम जो तरावी पढ़ते हैं उसमें हम इन दोनों नरमियों से फ़ायदा उठाते हैं, यानी ये नरमी कि हम तहज्जुद को इशा के बाद ले आते हैं, और दूसरी ये नरमी कि हम रकातें जितनी मर्जी पढ़ लें, 20 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, यानी 20 और 3 23 पढ़ लें, या 11 पढ़ लें, या जितनी भी तौफीक हो वो हम पढ़ सकते हैं। और दूसरी तीसरी बात ये कि इसमें कुरान मजीद गौर व खौज के लिए पढ़ने के लिए कहा गया है, तेज़ी से ख़त्म करने के लिए नहीं। ये इसकी खिलाफ वर्जी हमारी तरावी में हो रही है कि हम, और दूसरी खिलाफ वर्जी तरावी में ये हो रही है कि हम सिर्फ रमज़ान के साथ उसको ख़ास समझते हैं। तो तहज्जुद की नमाज ने तरावी की शक्ल इख्तियार की है, तो ये 12 महीने की नमाज है, नफली है, फ़र्ज़ नहीं है, नफली है। और दूसरी बात ये कि इसमें कुरान मजीद ठहर कर गौर के लिए, समझ करने पढ़ने के लिए रखा गया है, ना कि तेज़ी से पढ़ने के लिए। तो कुरान मजीद से जो बातें इस नमाज के बारे में मालूम होती थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अगली नशिस्त में हम हदीस की बुनियाद पर बात करेंगे कि अहदीस से इसकी क्या तफसीलात हमारे सामने आती हैं। तब तक के लिए।